वहीं दूसरी तरफ नंदिनी अपनी मॉम और उदय की मम्मी के साथ बैठी थी। उदय की मम्मी ने कहा, हमने रानी सा से बात तो कर ली है, अब कल वो पगफेर की रस्म के लिए अभिमन्यु और इप्सिता को भेज भी देंगी। हमें अब कल की काफ़ी सारी तैयारी करनी होगी। जैसे ही उन्होंने ये बात कही, नंदिनी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, मम्मी जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी, आप मुझे बता दीजिए बस मुझे क्या करना है। नंदिनी की मॉम ने भी उनकी तरफ देखते हुए कहा, बिल्कुल, अब भी हम यहाँ पर हैं तो हम सब साथ में मिलकर काम कर लेंगे। उदय की मम्मी ने जैसे ही ये बात सुनी, उन्होंने उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाउ स्वीट ऑफ यू, बट आप दोनों को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम घर के नौकर कर लेंगे, आप लोगों ने इतना बोल दिया यही हमारे लिए काफ़ी है। नंदिनी की मॉम ने जैसे ही उनकी ये बात सुनी, उन्होंने कहा, लेकिन सुहासिनी जी मैं ये कह रही थी कि इप्सिता को हमारे हाथ का मटर पनीर बहुत अच्छा लगता है, तो क्या मैं उसके लिए अपने हाथों से वो एक डिश बना सकती हूँ। सुहासिनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ये भी कोई पूछने वाली बात है, आप अगर इतने प्यार से इप्सिता के लिए कुछ बनाना चाहती हैं तो हम भला आपको क्यों मना करेंगे, आप उसके लिए बना सकती हैं, आपको जो भी बनाना हो, आई डोंट माइंड। उनकी ये बात सुनकर नंदिनी की मॉम खुश हो गई और फिर पगफेर की रस्म की तैयारी में लग गई। दूसरी तरफ इप्सिता सामने रखे हुए अपने कल के कपड़ों को देख रही थी और तभी अभिमन्यु पीछे से आकर उसे बैग हक करते हुए बोला, क्या बात है इप्सिता, क्या सोच रही हैं आप। इप्सिता ने अभिमन्यु के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस यही कपड़े देख रही थी जो कल पगफेर में हमें पहनना है। अभिमन्यु ने इप्सिता की ये बात सुनी और वो इप्सिता के करीब आकर बोला, शादी के बाद पहली बार अपने घर जा रही हैं, काफ़ी एक्साइटेड लग रही हैं आप, है ना। इप्सिता ने अभिमन्यु की ये बात सुनकर कुछ नहीं कहा और तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के गाल पर किस करते हुए कहा, अच्छा वैसे आप हमें ये बताइए, आप अभी जब नीचे थीं तो हमें ऐसा लग रहा था कि आप किसी बात को लेकर थोड़ी परेशान हो रही थीं, क्या चल रहा है आपके दिमाग में। इप्सिता ने अभिमन्यु की बात सुनी और तुरंत ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं तो हम बिल्कुल परेशान नहीं हैं, आपको ऐसा क्यों लगा, वो तो बस हम इतने सारे लोगों के साथ बैठे हुए थे ना, तभी हमारा थोड़ा सा जी घबरा रहा था, इसलिए, क्योंकि हमें ज़्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं है इसलिए हम थोड़े से अनकम्फर्टेबल हो रहे थे, बाकी हम परेशान किसी चीज़ को लेकर नहीं हैं, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभिमन्यु ने जैसे ही इप्सिता के मुंह से ये बात सुनी, वो उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए बोला, ओके अगर आप परेशान नहीं हैं तो फिर हम आपको थोड़ा सा कुछ परेशान करें। इप्सिता ने जैसे ही उसकी ये बात सुनी, वो समझ गई कि अभिमन्यु क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इप्सिता ने तुरंत अभिमन्यु का हाथ अपनी कमर पर से हटा दिया और वो अपना चेहरा दूसरी तरफ घूमते हुए बोली, नहीं कोई ज़रूरत नहीं हमें परेशान करने की, जाइए जाकर चेंज करके आइए, हम भी जब तक अपने सामान समेट लेते हैं। इतना बोलकर इप्सिता अपने सामान को समेटने के लिए झुकी, तभी अभिमन्यु ने इप्सिता का हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, आपको अभी भी ऐसा लगता है कि हम आपके ये बहाने सुनेंगे। इप्सिता अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देख रही थी, उसे अभिमन्यु की आंखों में शरारत साफ नजर आ रही थी। इप्सिता ने ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं आज हम कुछ भी करने के मूड में नहीं है, आप चेंज करके आइए और हम वैसे भी आज बहुत थक गए हैं, काफ़ी नींद आ रही है हमें और सुबह के लिए भी निकलना है, इसलिए जाइए जल्दी से आप चेंज करके आइए। इतना बोलकर इप्सिता ने अपना सामान उठाया और उसे लेकर बेड से हटने लगी। अभिमन्यु उसे जाते हुए देखा और वो मन ही मन मुस्कुराई, उसने धीमी आवाज में कहा, अभिमन्यु को जब पहली बार देखा था तो हमने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि वो इतने ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, क्योंकि हमें आज भी उनसे मिली हुई अपनी पहली मुलाकात याद है, हमने तो उन्हें एक घमंडी कुंवर समझा था, पर कहते हैं ना किसी को भी पहली मुलाकात में जज नहीं करना चाहिए, अभिमन्यु वैसे बिल्कुल भी नहीं है। इप्सिता ये सोच सोचकर मुस्कुराती जा रही थी, तभी अभिमन्यु वॉशरूम से चेंज करके बाहर आया, उसने इप्सिता को इस तरह अपनी सोच में डूबा देखकर उसके बगल में आकर कहा, इप्सिता क्या सोच रही हैं आप। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की आवाज़ सुनी, वो उसकी तरफ देखकर बोली, कुछ नहीं बस ऐसे ही। अभिमन्यु ने इप्सिता के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके बिल्कुल करीब जाते हुए कहा, हमारे बारे में सोच रही थी ना। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु के मुंह से ये बात सुनी, उसने मन में कहा, इन्हें कैसे पता चला। इप्सिता के चेहरे पर हैरानी देखकर अभिमन्यु ने कहा, आप यही सोच रही हैं ना कि हमें ये बात कैसे पता चली। इप्सिता ने तेजी से ना में सिर हिलाते हुए कहा, नहीं हम ऐसा कुछ नहीं सोच रहे थे। अभिमन्यु उसकी तरफ मुस्कुराने लगा और वो उसके बिल्कुल करीब जाकर उसकी गाल पर किस करते हुए बोला, हमें पता है आप हमारे बारे में ही सोच रही थी और आप ये बात मानेंगी नहीं, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छी तरह से समझ चुके हैं। इप्सिता ने जैसे ही अभिमन्यु की बात सुनी, वो बिल्कुल हैरान हो गई, उसने ना में सिर हिलाया और वो चुपचाप बेड पर लेट गई। अभिमन्यु उसे इस तरह बेड पर लेटते देख धीरे धीरे उसके करीब गया, उसने इप्सिता के पास आकर कहा, कोई बात नहीं, अगर आप हमारे बारे में सोच भी रही थी तो आप आराम से सोच सकती हैं। वैसे भी अब तो हम आपके हस्बैंड हैं, आप हमें जितना सोचेंगी उतना कम है। इतना बोलकर अभिमन्यु मुस्कुराने लगा और इप्सिता अभिमन्यु को अपनी इतनी नजदीक देखकर काफी ज्यादा ब्लश कर रही थी। अभिमन्यु ने इप्सिता के हाथ को अपने हाथ में लिया और उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां फंसाकर उसके बिल्कुल करीब आकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। वो बड़ी ही सॉफ्टली इप्सिता के होठों को किस करने लगा। इप्सिता अभिमन्यु की किस को फील कर रही थी और वो अभिमन्यु की आंखों में आंखें डालकर देखने लगी। उसने धीरे धीमे आवाज में कहा, अभिमन्यु हम नहीं चाहते हैं आज हम दोनों। इप्सिता बोल ही रही थी कि अभिमन्यु ने उसके होठों पर अपनी उंगली रखी और धीरे से ना में सिर हिलाते हुए कहा, आई अंडरस्टैंड, आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। इतना बोलकर अभिमन्यु ने इप्सिता को चुप कर दिया और वो उसके होठों पर किस करते करते धीरे से उसकी गर्दन पर किस करने लगा। इप्सिता ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और वो अभिमन्यु के होठों को अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अभिमन्यु ने इप्सिता के कान के पास जाकर उसके ईयर लोब को हल्के से बाइट करते हुए कहा, गुड नाइट, टेक अ रेस्ट। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के ऊपर से हट गया और इप्सिता ने उसे इस तरह खुद से दूर जाते देखा तो वो हल्के से मुस्कुराई। अभिमन्यु उसके बगल में आकर लेट गया। अभिमन्यु इप्सिता के बिना कुछ बोले ही उसकी मन की बात समझ गया था। इप्सिता इस बात से काफी ज्यादा खुश हो रही थी कि बिना कुछ बोले ही अभिमन्यु उसके जज्बातों को समझ गया। इप्सिता को बड़ी खुशी हो रही थी और वो अभिमन्यु को बड़ी ही प्यार भरी नजरों से देख रही थी। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब अगर आप हमें इतनी प्यार भरी नजरों से देखेंगी तो हमारा मन करेगा कि हम आपके और भी करीब आ जाएं और फिर हम अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। इप्सिता उसकी ये बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी और तभी अभिमन्यु ने कहा, आंखें बंद करिए और सो जाइए। इतना बोलकर अभिमन्यु इप्सिता के करीब आया। उसने अपने हाथों से इप्सिता की आंखों को छुआ और इप्सिता ने अपनी आंखें बंद कर ली। अभिमन्यु ने इप्सिता को अपनी बाहों में भर लिया और वे दोनों एक दूसरे की बाहों में सो गए।
वहीं दूसरी तरफ उदय और नंदिनी भी सारी तैयारी करने के बाद अपने बेडरूम में आ चुके थे। उदय चुपचाप बेड पर लेटा हुआ था। वहीं नंदिनी को नींद नहीं आ रही थी और वो अपने सारे नए कपड़ों को निकालकर सोफे पर रखे हुए थी। वो गहरी सोच में डूबी हुई थी। उदय बहुत देर से नंदिनी को इस तरह सारे कपड़े सोफे पर बिखेरते हुए देख रहा था। वो उठकर नंदिनी के पास आया और उसे बैक हग करते हुए कहा, क्या बात है, हम इतनी देर से देख रहे हैं नंदिनी, आपको घूरते हुए देख रहे हैं, आखिर बात क्या है? अगर आप किसी चीज को लेकर कंफ्यूज हैं तो हमें बताइए। नंदिनी ने कहा, एक्चुअली हम सच में बहुत कंफ्यूज हो गए हैं, हमें समझ नहीं आ रहा है कि इनमें से कल कौन सा कपड़ा पहनना है। उदय ने उसके कंधे पर अपना सिर रखते हुए कहा, आपके ऊपर सारे कपड़े अच्छे लगते हैं, आप तो कुछ भी पहन लीजिए, प्यारी ही लगेंगी। नंदिनी ने उदय की बात सुनकर खुश होते हुए कहा, ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने, अब हमारे लिए एक कपड़ा चीज करिए कि हम कल क्या पहने। इप्सिता जीजू के साथ पहली बार यहाँ आ रही हैं तो हमें कुछ तो अच्छा पहनना पड़ेगा, है ना? उदय ने नंदिनी के चेहरे की तरफ देखा, वो काफी ज्यादा कन्फ्यूज लग रही थी। तभी उदय उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया और सीधे सोफे के पास आया। उसने वहीं रखा हुआ एक वाइट और ब्लैक कलर का अच्छा सा प्रिंटेड और बहुत ही स्टाइलिश कुर्ता उठाया। उसे नंदिनी की तरफ देखते हुए कहा, नंदिनी हम इसी से मैचिंग सूट पहन लेंगे, फिर तो हम दोनों एक परफेक्ट कपल लगेंगे, है ना?